remember no more the sins of his youth, O Lord, and the wrong he did when he knew no better. But be mindful of him in the brightness of thy glory, according to thy great mercy. May the heavens be open to him. May the angels rejoice. बेटे, आखिरी वक्त में ईश्वर का ध्यान करने से इंसान की आत्मा को मुक्ति मिलती
है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हारा ईश्वर पागलती है, मुझे तो सबसे नफरत है।
नहीं बेटे, ईश्वर कहता है आखिरी वक्त में जो मुझे याद करके अपना गुनाह कबूल करेगा, मैं उसके गुनाह को बख्श दूंगा।
किसका गुनाह कबूल करूं? तुम्हारा, जो मुझे कातिल समझा है, उनका, जिन्होंने मुझे कातिल ठहराया, या तुम्हारे पाखंडी ईश्वर का, जो एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पे चढ़ता हुआ देख रहा है? मैंने कोई खून नहीं किया, मैं मासूम हूं। सुनते हो?
कपूर, एडीसी टू हिज एक्सलेंसी।
मिस्टर कपूर, मैं धरमदास बोल रहा हूँ, मुझे गवर्नर साहब से जरूरी बात करनी है।
धरमदास जी, इस वक्त बात करना मुमकिन नहीं, वो एक बहुत जरूरी मीटिंग में है।
मिस्टर कपूर, ये एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। गवर्नर साहब के साथ मेरे क्या ताल्लुकात है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि मेरा टेलीफोन है।
Forth a Christian soul out of this world in the name of God, the Father who created you, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God.
बोलो धर्मदास, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम चंद मिनट इंतजार नहीं कर सके?
जो एक्सलेंसी, अब से चंद मिनट बाद एक मासूम आदमी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। अचानक अभी मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि आदमी बेगुनाह है। मेरे वकील का मशवरा है कि
सेक्शन 401
के तहत एक सिर्फ आप हैं
जो इतने कम वक्त में इस फांसी को रुकवा सकते हैं।
ये काम इतना आसान नहीं है धर्मदास। जब तक ये बात साबित न हो जाए कि अपील के वक्त ये सबूत किसी खास वजह से कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके, मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है, बंद करो।
योर एक्सेलेंसी, मैं फांसी की सजा माफ करने के लिए नहीं बल्कि फांसी रुकवाने की विनती कर रहा हूँ, जब तक नए सबूतों की रोशनी में इस केस की दोबारा जांच पड़ताल ना हो जाए।
धर्मदास, कोर्ट फांसी की सजा केस के हर पहलू को बारीकी से परखने के बाद देती है, जिसमें गलती का इम्कान बहुत कम होता है।
O Lord, as he stands before thee, forget all his past wrongdoing and the excesses into which angry passion.
लेकिन गवर्नर साहब, इस केस में गलती हो चुकी है।
मेरे और आपके एक लंबे अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात रह चुके हैं,
लेकिन मैंने कभी अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। अगर इस आदमी को फांसी लग गई तो ये कानून और इंसाफ के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा।
May Christ, who chose to die for you, free you from eternal death. May he blot out all your sins and cast your lot among the saints at his right hand. Deliver the soul of thy servant, Lord, from the danger, from the bonds of hell, and from every suffering.
गवर्नर साहब का हुक्म है कि ये फांसी रोक दी जाए।
फादर, बेटे, ईश्वर के देन में देर है, अंधेर नहीं।
योर एक्सलेंसी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। एफिडेविट लेकर मैं खुद हाजिर हो रहा हूं।
क्या मैं इस रोग से नहीं बच सकता? क्या ये सच? मैं मर रहा हूं।
मेरे दोस्त, मौत ही एक ऐसी सच्चाई है
जो अटल है, जिसे कोई भाग नहीं सकता।
नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लो धर्मदास।
पुरुषोत्तम, अगर मुझ पे इतनी शक्ति होती तो मैं भगवान से भी ज्यादा रहमदिल होता। माँ, अल्फल जीने की आशा लेकर एक अज्ञानी इंसान कितने दुख भोगता है, कितनी तकलीफें उठाता है। ये शरीर नाशवान है, फिर से कैसा मुंह। माँ, पुरुषोत्तम के दुखों का अंत कर, उसकी जान बहुत कष्ट में है। जीने की आशा लेकर वो बहुत दुख भोग रहा है, उस बदनसीब पर दया कर माँ, उसकी आत्मा को मुक्ति दे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः।
बोला बेटी। हाँ माँ। चल नाश्ता कर ले।
हाँ माँ, मैं आई, अभी आई बस।
ये क्या नया पागलपन सूझा है तुझे? सुबह उठते ही घास छांटने लगती है, माली मर गए हैं क्या?
अपने आप को थोड़ा हल्का कर रही हूँ माँ, वरना आपकी इस मोटी ताजी लड़की से कोई शादी नहीं करने वाला।
पगली कहीं।
नमस्ते आंटी जी।
नमस्ते बेटी।
नमस्ते। हाय।
नमस्ते जी।
हाय अनु, तू जब भी आती है ना तूफान की तरह आती है।
क्या करूं मोना, इस तरफ आते ही पर लग जाते हैं। रणवीर का कुछ पता चला?
हाँ भाई, मैंने तो अपनी राखी डाक से भिजवा दी, तुझे भी भिजवानी है?
चल हट, मजाक छोड़। कहाँ है वो? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान? इतनी दूर?
जनलाल, कोई अच्छा सा लड़का देख कर अन्नू की शादी कर दो।
लेकिन भाई साहब, अन्नू
ये मेरा हुक्म है। बेटे, रणवीर का ख्याल दिल से निकाल दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है।
बिलाल।
हाँ बड़े भाई।
बाजार बहुत गर्म है।
हाँ बड़े भैया, अच्छी रौनक लगी है।
बोले छगनलाल जी, सत्ता 50,000। भगनलाल जी, सत्ता खा जाऊं?
खा जाओ, खा जाओ।
हिंदुस्तान, मलेशिया और सिंगापुर मिला के आज की टोटल बैटिंग 3,60,00,000 की है, जिसमें से 2,40,00,000 रुपया हमारे बुकीज के पास लगा हुआ।
तो शेफ लाइन पत्ते खोले।
एक दो चार ओपन सत्ता।
हाँ भाई कौशल।
हाँ एक दो चार पहले सत्ता।
सत्ता सत्ता सत्ता, कल ओपनिंग में सत्ता, क्लोजिंग में सत्ता, आज फिर ओपनिंग में सत्ता, पूरे 20,00,000 रुपए का घाटा। बिरादर,
बड़े भाई,
धर्मात्मा नहीं, फ्रॉड है ये, फ्रॉड।
धर्मात्मा अगर दिन को रात कह दे तो जनता कहेगी रात है, और अगर वो रात को दिन कह दे।
क्या गधे के बच्चे।
एक गधा दूसरे गधे को कैसे चुप करा सकता है?
हम बात अपने बाप को गाली देता है।
बड़े भाई,
बिरादर, गांजे की सिगरेटों ने इनका भेजा फिरा दिया है।
गांजा नहीं, शिवपुरी खाओ अंकल जी।
तू भी बोला कंबख्त।
चल बे नटवर, इन बुड्ढों में बैठ के कहां अपनी शाम का सत्यानाश कर रहा है। उठ।
ना जाने हराम और किस दिन हमारे घर में पैदा हुए थे।
बड़े भाई, इन बच्चों की बातों को छोड़ो और इस धर्मात्मा के बारे में सोचो। 20 साल पहले छोटा सा बुकी बन के आया था, और आज सारे धंधे में कब्जा करके बैठ गया है।
बिरादर, दुश्मन को छोटा समझकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इस धर्मदास को धर्मात्मा बनने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था।
बड़े भाई, क्या वो जिंदगी भर हमारी छाती पे बूंगलता रहेगा?
नहीं बिरादर, नहीं। अनोखे लाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं ऐसा पकवान तैयार कर रहा हूँ कि अगर धर्मात्मा ने उसे जरा भी चख लिया तो बंटा धार हुआ ही समझो।
बड़े भाई, मतलब ये के राम नाम सत्य है?
तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
कमिंग
रानी। इस वक्त कहाँ जा रही हो बेटे?
यू ही जरा ड्राइव के लिए डैडी।
नटवर के साथ?
हाँ। मैं चलूं?
अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी चली आना।
ओके, गुड नाइट।
रानी, हम कितने दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है जैसे हमारे दरमियान मीलों का फासला हो।
कैसा फासला? इतने पास तो बैठी हूँ तुम्हारे।
इसे पास बैठना नहीं कहते जब तक प्रेमी का जिस्म बाजू में ना हो, उसका सर सीने पर ना हो। तो प्रेमी के दिल कुछ चाहिए।
स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट।
क्या?
कुछ नहीं।
तुम तो ऐसे चक रही हो जैसे हाथ लगाने से घिस जाओगी।
मुझे अच्छा नहीं लगता।
क्या अच्छा नहीं लगता है बेबी?
शादी से पहले इस किस्म का प्यार।
संध्या ठीक कहती है नटवर, आज कर ही डालो इससे शादी।
कौन है ये?
मेरा दोस्त। सिर्फ दोस्त ही नहीं, चचेरा भाई भी। करोगी हम दोनों से शादी?
मैं तुम्हारे पास इस जुल्म का इंसाफ मांगने आया हूं।
उसके लिए पुलिस है, अदालत है।
मैं अदालत तक नहीं पहुंच पाऊंगा।
क्यों?
मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन वो लोग जमानत पर रिहा हो गए। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की तो मैं, मेरी बच्ची, मेरी बीवी तीनों खत्म कर दिए जाएंगे।
इस धमकी से बचने का एक बहुत आसान तरीका है, पुलिस से अपना केस वापस ले लो।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी जीते जी मौत होगी। मैं जिंदगी भर अपनी बच्ची को मुंह न दिखा पाऊंगा। मुझे सिवाय इस दरवाजे के और कहीं से इंसाफ नहीं मिल सकता।
मेरे दरवाजे पर आने से पहले तुम अपना दरवाजा भूल गए हो। आज से 20 बरस पहले की वो रात याद है तुम्हें, जब मेरी बीवी और बच्चों की जान पर बनाई थी और मैं उन्हें लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आया था और तुमने उन पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए कि तुम अपने आप को एक इज्जतदार शहरी समझते थे और मुझे एक बाजारी गुंडा। उस रात भी वही लोग थे जो मेरी बीवी और बच्चों की जान लेना चाहते थे, और आज भी वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है। मैं भी उनसे अकेला ही निपटा था और तुम भी उनसे अकेले ही निपटो।
धर्मदास, मुझे उन भेड़ियों के हवाले मत करो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, सिर्फ एक तुम हो जो उनकी कमर तोड़ सकते हो।
कल तक धर्मदास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था और आज जब तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई तो तुम्हें धर्मदास याद आ गया। जिंदगी भर आंखें बंद करके रुपया कमाते रहे तुम, लेकिन कभी एक कैसे दोस्त की दोस्ती कमाने की कोशिश की जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम आ सके?
वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी धर्मदास, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं झोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं।
अगर मुझे न सही, लेकिन रानी को अपनी बेटी समझकर इंसाफ की भीख दे दो धर्मात्मा।
तुम्हारी नजरों में इंसाफ की हत्या है।
आंख का बदला आंख, मैं अनोखे लाल और मेघनाथ के बेटों की मौत चाहता हूं।
लेकिन तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है, तुम्हें इंसाफ चाहिए, बराबर का तोल कर दूंगा।
अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज। शट अप।
हाय प्रिंसेस, प्रोग्राम खत्म हो गया।
आपसे मतलब?
हैव अ ड्रिंक विद अस बेब।
नो थैंक यू।
ड्राइव पर चलोगी?
मेरी शामत आई है क्या?
नहीं डार्लिंग, हम शहजादों का दिल आ गया है तुम पर।
मुझे रानी समझ रखा है क्या? वो लड़की पागल होगी जो तुम जैसे जानवरों के साथ जाएगी।
तुम जा सकती हो।
मरीज इलाज की हद से बाहर है। कैंसर स्पेशलिस्ट आया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि पुरुषोत्तम रात काट सके। परमात्मा, डॉक्टर रॉय।
हेलो डॉक्टर जगदीश, मैं मरीज को एक घंटे बाद फिर देखने आऊंगा।
डॉक्टर रॉय, क्या वाकई मरीज का आखिरी वक्त आ गया है?
इसमें कोई शक नहीं।
फिर आपको वापस आने की जरूरत नहीं। आप मरीज की चिंता मत कीजिए, उसकी तड़पती हुई आत्मा को शांति हम देंगे। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश।
बोलो मेरे दोस्त।
मेरा बेटा कुंदन मोना से बहुत प्यार करता है। ये तुम्हारी जी जान से खिदमत करेगा जैसी मैंने की है। मुझसे वादा करो तुम मुझसे अपने घर में सही जगह दोगे।
मैं वादा करता हूँ पुरुषोत्तम कि दोनों की शादी जरूर होगी, अगर मोना भी कुंदन से प्यार करती है तो।
शादी होगी, रणबीर नहीं आएगा क्या?
मैं उसका नाम भी इस घर में सुनना नहीं चाहता।
वो आखिर आपका बेटा है, इस घर का चिराग है। बहन की शादी होगी और भाई घर से गायब, दुनिया क्या कहेगी?
मैंने कभी दुनिया की परवाह नहीं की शांति। मेरी जिंदगी में ये पहला मौका है जब मेरा अपना बेटा, मेरी अपनी औलाद इस घर का सुख
बाप की इज्जत हर चीज को ठोकर मारकर चला गया।
ये गलत है पिताजी, आप देश और कौम से गद्दारी कर रहे हैं। चोरी चाहे एक पैसे की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी है। आप आधे चोर, एक चौथाई चोर, ऐसे चोर नहीं बन सकते। या तो आप चोर हैं या एक शरीफ आदमी।
शराफत, ईमानदारी, देशभक्ति, तुमने इनके असली रूप नहीं देखे बेटे। बाहर से तालीम हासिल करके नए नए आए हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो।
इस दुनिया में ईमानदारी नाम है भूखे मरने का।
शराफत कहते हैं बिक जाने को, और देशभक्ति सिर्फ एक नारा है। जिसने जितना ऊंचा लगाया उतनी बड़ी गद्दी संभाल कर बैठ गया।
इसलिए आपने ये सब उसूल दाग पर रखी है। ईमानदारी के नाम पे आप सट्टा चलाते हैं, मटका खोलते हैं। शराफत के नाम पे गलत अकाउंट बनवा के लाखों और करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स खा जाते हैं। देशभक्ति की आड़ में दुनिया भर के जुर्म करवाते हैं। गुंडों, कातिलों और सजा याफ्ता मुजरिमों को बना देते हैं।
ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है बच्चे, दूसरी तरफ मेरे चंदे से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशालाएं और आश्रम चलते हैं, जहां विद्यार्थियों को मुफ्त में तालीम दी जाती है, गरीबों और अपाहिजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, विधवाओं और अनाथों को शरण मिलती है। मेरा लफ्ज जनता के लिए पत्थर की लकीर है, लोग मुझे धर्मात्मा कहते हैं।
आप समझते हैं कि मटके के जरिए हजारों लाखों घर तबाह करके चंद गरीबों के मुंह में रोटी डाल दी तो आप धर्मात्मा बन गए? शहर में 100 खून करवाने के बाद 10 आदमियों के जख्मों पे मरहम रख दिया तो आप धर्मात्मा बन गए? स्मगलिंग के जरिए देश को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाकर चंद यतीमों के आंसू पोंछ दिए तो आप धर्मात्मा बन गए? नहीं पिताजी, नहीं। अगर आपकी नजरों में ये धर्म है तो भगवान जाने देश और धर्म का क्या होगा।
तुम बहक रहे रणवीर, जवानी के जोश में आकर आदर्शवाद की बातें करना आसान है, लेकिन गरीबी के नर्क से निकलकर मेरी पोजीशन तक पहुंचना नामुमकिन काम है। बस देश के उन चंद आदमियों में से हूं जिन्होंने समाज को अपने घुटनों के नीचे दबा कर रखा है।
आप यकीनन समाज को अपने घुटने के नीचे दबा सकते हैं पिताजी, लेकिन कानून को नहीं। कोई घुटना इतना मजबूत नहीं होता जो कानून की फौलादी गिरफ्त में ना आ सके। अब भी वक्त है पिताजी, आप ये गलत काम बंद कर दीजिए इससे पहले कि कानून के बेरहम हाथ आपको दबोच ले।
कानून, 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 कौन से कानून? मैं अपने लिए खुद कानून हूँ। मैं रोज कानून बनाता हूँ, रोज तोड़ता हूँ।
बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप पिताजी, ये मत भूलिए। जो लोग तलवार के जोर पर जिंदा रहते हैं, एक दिन उनकी गर्दन उसी तलवार से कटती है।
जंगली बिल्ली भगा भगा के थका दिया।
भागने का नाम जवानी और थम गई तो ठहरा पानी।
एक बार हाथ आ जाओ तो मजा चखाता हूँ।
हाथ आ भी गए तो क्या कर लोगे?
तेरी चढ़ती जवानी को खोल कर पी जाऊंगा।
अच्छा ये बात है, अगर मर्द का बच्चा है तो लिप पकड़ हाथ। बस हो गई सिटी बंद। अरे ये जवानी को वही पिएगा जिसपे अपना दिल आ जाए।
अब बोल क्या इरादा है तेरा?
अपना इरादा तो जान देने का है, कोई लेने वाला भी तो हो।
ऐसे नहीं मानेगी तू?
कैसे भी नहीं मानूंगी,
कच्चा चबा जाऊंगा,
दांत टूट जाएंगे।
वाह क्या मर्दानगी है, औरत से कुश्ती लड़ी जा रही है।
खैर चाहते हो तो अपना रास्ता नापो।
लगता है आज तक किसी मत से पाला नहीं पड़ा तुम्हारा।
नहीं जी जरा, अजनबियों के मुंह नहीं लगा करते। चलो यहाँ से, चलो चलो।
नमस्ते बाबूजी।
कैसे हो बेटे?
ठीक हूँ, बहुत दिनों के बाद वापस आए।
बेटे जब से तुमने काम संभाला है मुझे किसी बात की फिक्र नहीं रही। थोड़े दिनों के लिए हिंदुस्तान चला गया था, वहां तुम्हारे घर जाने का मौका मिला।
मां और मोना कैसे?
मां और मोना अच्छे हैं, तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मालूम है रणवीर,
अगले महीने मोना की शादी होने वाली है।
मोना की शादी?
हाँ।
किससे?
वो तुम्हारे पिताजी की दोस्त है ना पुरुषोत्तम, उनके बेटे कुंदन के साथ।
कुंदन के साथ? बाबूजी मोना इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई, यकीन नहीं आ रहा।
रणबीर मैं तुम्हें अभी सलाह दूंगा बेटे, तुम घर वापस चले जाओ।
आप तो जानते हैं बाबूजी, पिताजी के और मेरे हालात में कितना फर्क है।
तो क्या हुआ, जरूरी नहीं कि एक घर में रहते हुए बाप बेटे के नजरिए भी आपस में मिले।
बात नजरिए की नहीं है बाबूजी, सवाल उसूल का है। इंसान अपने उसूलों के सहारे ही जिंदा रहता है।
लेकिन रणबीर तुमने कभी सोचा है कि तुम किस बाप के बेटे हो? ये छोटा मोटा काम तुम्हें शोभा नहीं देता।
आप चाहते हैं मैं यहां से भी चला जाऊं?
अरे ये मैंने कब कहा? खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ क्या शाम को क्या कर रहे हो?
जो रोज करता हूं बाबूजी, नदी में जाके तैरूंगा, जब जिस्म थक के चूर हो जाएगा वापस आकर सो जाऊंगा।
सैर करने चलोगे?
कहां,
यहां खाना बदोशों का काफिला आया है। अरे उसका सरदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शाम कमाल की गुजरेगी।
जी, तेरे सितारे तो बहुत बुलंद है, तेरी हर मुराद पूरी होगी। तुम तीन बहादुर लड़कों की मां बनोगी जिन पर सारा कबीला नाज करेगा। रेशमा, ओ रेशमा, तुम अपना हाथ नहीं दिखाओगी?
अभी नहीं मां, वक्त आने पर।
कितने शर्त लगाते हो?
500 वानी
बस, और दम है तो बोलो। 1000 अफगानी।
हार जाओगे।
शर्त तो हार गए, अब दिल मत हार जाना। चलो तुम्हें सरदार से मिलवाएं।
आगे रोशनलाल, 2 साल के बाद एक अजीज दोस्त से मिलकर बड़ी खुशी हुई। ऐ बरखुरदार, हमारी मेहमान नवाजी कबूल फरमा।
जा,
मेरी गली।